ala ibadihillezine istafa amma ba'd. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve barik ve sellem. Allahumme arinal hakka hakkan ve rizukna ittiba'ah. Ve arinal batila batilan ve rizukna ictinabah. Rabbena zidna ilma. Agar koi sahab bata dein ki aapko awaaz to inaan ho jaye. اوکے شکریہ آپ کا تو کتاب سلوک و احسان میں ہم اخلاق ان کے حصول کے طریقے پڑھ رہے تھے اور ہم نے ٹاپک شروع کر دیا تھا اور تین پیجز اس میں پڑھ لیے تھے ان کا مختصر خلاصہ کہ یہ جو اخلاق حمیدہ ہیں ان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کو بھی شامل کیا خوف خدا اللہ تعالیٰ سے امید صبر اور اس کا طریقہ شکر اور اس کا طریقہ توکل اور اس کا طریقہ محبت اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا صدق یعنی سچی نیت اور مراقبہ یعنی ہر وقت دل کی طرف دھیان بنا کر کے رکھنا آج قرآن کریم کی تلاوت میں دل لگانے کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو فرماتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے ہمیں تھوڑا سا قرآن سناؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسا پڑھتے ہو تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے پڑھنے والا خوب بنا سوار کر اور سنبھال کر پڑھے گا لہٰذا جب قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ ہو تو دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ قرآن مجید سنانے کی فرمائش کری ہے اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اور یہ اس قسم کا حکم ہے کہ جو کہ امت کے اوپر بھی عمومی طور پر آتا ہے کہ فَقْرَأُوا کہ تم پڑھو اس کو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ کہ جتنا بھی تمہارے لیے آسان ہو اس کے اندر سے ٹھیک ہے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نیز یہ خیال کرو کہ کسی آدمی کے کہنے سے میں بنا سنوار کر پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے تو خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ سب باتیں سوچ کر اب پڑھنا شروع کرو جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں ہو اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا توجہ ادھر ادھر بٹنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا روک کر ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا اگر کچھ مدت تک اسی طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا تو تلاوت کے لیے اہتمام میں تو تجوید کا سیکھنا بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ پڑھے ہیں وہ صحیح ساتھ پڑھے ہیں جو قرآت کے اصول ہیں کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ نہیں رکنا ہے کس طرح سے الفاظ کو ملانا ہے یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں اگرچہ کہ جو اجمیوں کے لیے قرآن چھپتا ہے اب تو اس کے اندر اس طریقے سے ساری تفصیلات جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں کہ پڑھنے والا جو ہے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے رکنے کے لیے بھی چند چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں کہ جی جہاں پر یعنی قا ہے وہاں پہ رکنا ہے جہاں پہ آیت کا گول دائرہ ہے وہاں پہ رکنا ہے اور جہاں پر جیم ہے وہاں پہ رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی رک سکتے ہیں جہاں پہ لام الف لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے تو یہ چند ہی اصول ہوتے ہیں جو کہ ہر مصحف کے آخر میں بھی لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ اصول سیکھنا آسان ہے البتہ جو حروف کے صحیح مخرج ہوتے ہیں ان کو کسی استاد کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے تو اگر بچپن میں قاری صاحب سے سیکھ لیا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں سیکھا ہو تو اپنے قرآن کو کسی ماہر قاری کے سامنے سنا کر کے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا میں غلط تو نہیں پڑھ رہا ایسا تو نہیں غلط پڑھ رہا کہ جس سے کہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دال اور غاد کے درمیان میں فرق کوئی نہیں کر رہا میں دال اور زا کو جو ہے وہ ایک طریقے سے پڑھ رہا ہوں میں سود اور سین میں کوئی فرق نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قاری سن کر کے آپ کو بتا سکتا ہے اور کچھ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بہت بڑی عمر کے لوگ اور اچھا خاصا میچیور لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ اسکپ کر جاتے ہیں یعنی الفاظ ہو جاتے ہیں حروف اسکپ ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو جو سننے والا ہوتا ہے تو وہ پکڑتا ہے غلطی کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے اسکپ کر دیا بڑی بڑی عمر کی خواتین اچھی خاصی उनके साथ यही देखा, बड़े बड़े उम्र के मर्द और वो भी बहुत ज्यादा दीनदार, यानी जाहिरी तौर पर आप देखें तो आप समझेंगे कि शायद कोई कोई मौलाना साहब आ रहे हैं, कोई मुफ्ती साहब आ रहे हैं, लेकिन जाहिरी वदाकत होती है दीनदारों की, लेकिन कुरान तक सही नहीं पढ़ना आता। तो ये भी एक रियलिटी है, तो इसको हमें चेक कर लेना चाहिए, और अगर उसके अंदर गलतियां निकले हैं निकलती हैं तो फिर हमें इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम किसी कारी साहब के साथ बैठ करके, किसी उस्ताद के साथ सही कुरान पढ़ना सीख लें। इसके लिए कोई उम्र नहीं होती कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और अब मैं क्या किसी के साथ बैठ करके इसको पढ़ूँ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिज़ा के कहने के ऊपर जब हिफ्ज करना शुरू किया तो उस वक्त यानी कोई और जगह मौजूद नहीं थी, तो बच्चों का एक मदरसा था, तो उस बच्चों के मदरसे बैठते थे बच्चों के साथ ही, छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके साथ बैठे होते थे और कुरान हिफ्ज करने की कोशिश कर रहे होते थे, अगरचे कि वो सिलसिला आगे मुनकता हो गया, लेकिन जितना कर सकते थे उतना कर लिया, और उसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं महसूस करी कि जी इतने छोटे बच्चों के साथ हम कैसे बैठे। लोग हैरान होते थे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने आसान फरमाया। तो इस तरीके से अगर छोटे बच्चों के मदरसे में भी जाना पड़ जाए तो इससे भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुरान सही पढ़ना जो है वो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, कुरान का हक है हमारे ऊपर। अलबत्ता अगर सही पढ़ने के अंदर मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो इसको बायस अजर समझना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अटक करके पढ़ता है, मुश्किल से पढ़ता है लेकिन कोशिश कर रहा होता है, तो उसको दो दुगना अजर मिलता है। एक तो यानी कुरान पढ़ने का अजर मिलता है, दूसरा मेहनत करने का, मुश्किल से ओवरकम करने का अजर मिलता है। दूसरी बात ये कि हजरत ने यहाँ पर फरमाया कि जी ज्यादा पढ़ते रहो और इस तरह से तुम्हारे लिए यानी पढ़ना आसान हो जाएगा, तवज्जो लगनी शुरू हो जाएगी। इसके बारे में हजरत ने वैसे आगे डिस्कस किया है कि ये सारी जो चीजें हैं तो इनके रास्ते में फिर रुकावटें भी होती हैं, यानी ऐसा भी होता है कि एक इंसान जो है वो कुरान के साथ वक्त बिल्कुल नहीं लगा पा रहा होता। ऐसा भी देखा गया कि किसी बच्चे ने फायदा कुरान हिफ्ज किया, लेकिन हिफ्ज करने के बाद ऐसा कुरान छोड़ा कि साल में एक दफा भी कुरान नहीं उठाया। ठीक है, ऐसा भी ऐसे भी केसेस हैं, हत्ता कि कुछ हुफाज के वाकयात सुने कि जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करी, इस्लाही ताल्लुक जोड़ा, तो उन्होंने एडमिट किया इस बात को कि मैं हाफिज कुरान तो था लेकिन 9 साल हो गए मैंने अभी तक कुरान एक दफा भी मुकम्मल नहीं पढ़ा, 9 साल हो गए हालांकि हाफिज कुरान। तो ऐसा भी मामला होता है दुनिया के अंदर, और ये आज के दौर के अंदर तो बदकिस्मती से ज्यादा ही है, तो इस वजह से इन रुकावटों को अबूर करना भी पड़ता है, तब कहीं कुरान के साथ इंसान का ताल्लुक पैदा होता है और फिर कुरान पढ़ने में मजा आता है, और फिर ऐसा मामला हो जाता है जब इंसान का ये कैफियत पैदा हो जाती है ना, तो फिर तो वाकई आज के दौर में इस जुल्मत के दौर में इस गुनाहों के दौर के अंदर भी ऐसा मामला हो जाता है कि कुरान छोड़ने का ही दिल नहीं चाहता, बस दिल चाहता है पढ़ते ही चले जाएं पढ़ते ही चले जाएं। अगर कोई मजबूरी ना हो, अगर कोई तकाजा ना हो, तो फिर कुरान छोड़ने यानी कुरान छूटे ही ना, हर मुस्तकिल पढ़ते रहें, ऐसी भी कैफियत अल्लाह ताला बना देते हैं, और इसी जमाने के अंदर। तो ये कोई पुराने जमानों की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। नमाज में दिल लगाने का तरीका, अब कुरान के बाद जो है नमाज की बात आती है, और नमाज आपको पता है कि यानी सबसे जरूरी और यानी हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने नमाज को बनाया। ठीक है, कुरान है वो बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है, बेहतरीन इबादत, ठीक है, इस उम्मत के लिए कुरान पढ़ना है, और नमाज जो है वो फर्ज तरीन या अहम तरीन इबादत है। ठीक है, तो अहम तरीन इबादत के बारे में, नमाज को कोई अमल, क्याम, कतात, रुकू, सुजूद और तस्बीहात वगैरह बेतवज्जुही से अदा ना हो, ठीक है, गफलत के साथ अदा ना हो, पता नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं, बल्कि हर अमल ध्यान और तवज्जो से अदा हो। मसलन तकबीर तहरीमा कहते वक्त ये ध्यान रखे कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा उसकी इबादत कर रहा हूँ, फिर सना पढ़ते वक्त ये सोचे कि मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा हूँ, इसी तरह तस्बीहात और दीगर अरकान में से हर एक को इस तरह अदा करे कि गोया वो अल्लाह ताला को देख रहा है, क्योंकि अगर वो अल्लाह ताला को नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह ताला तो उसको देख रहा है, यानी जो एहसान की कैफियत होती है, इस एहसान की कैफियत को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करे। इस ध्यान और तवज्जो से चंद दिन जब नमाज पढ़ेगा तो उसके बाद उसकी तवज्जो नमाज में नहीं बटेगी और नमाज में सुरूर आएगा। ये भी वही सारी बात है कि जी नमाज के अंदर तवज्जो बनाने के लिए इंसान एक कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दे। जब वो कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू करेगा ना, यानी अब मैंने अपनी नमाज बनानी है, ठीक है, तो देखें जब कोई इंसान इरादा कर लेता है ना, तो इरादा करने के बाद फिर ऐसा नहीं होता कि जी मसला हल हो जाता है, ठीक है, बस इरादा किया आपने और वो चीज आसान हो गई, ऐसा नहीं होता इस दुनिया के अंदर, ठीक है। बल्कि होता क्या है कि इरादा करने के बाद जो है ना, वो इंसान को फिर उस इरादे के हुसूल के रास्ते में जो जो जरूरियात पेश आती हैं, जो जो तकाजे होते हैं या जो जो रुकावटें होती हैं, उनका एहसास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहाँ से एहसास होना शुरू होता है? अल्लाह ताला की तरफ से एहसास होना शुरू हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उसके दिल में बांट डालते हैं, ठीक है। और कैसे डालते हैं? फरिश्ते के जरिए से डालते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरिश्ता रखा हुआ है, राइट, इस काम के ऊपर मामूर है। तो उसको ना फिर इन चीजों का एहसास होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एहसास होता है फिर वो उनका एहतमाम करना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी जो जो जरूरियात हैं जरूरियात को पूरा करना शुरू हो जाता है, जो जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को उबू के लिए स्टेप्स लेना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जो भी स्टेप्स हो, स्टेप्स तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो इरादा करने से ना ऐसा नहीं होता है कि आपने इरादा किया और फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो जादू हो गया और आपकी नमाज बननी शुरू हो गई, या ये कि बस इरादा करके बैठ गए और इस तरह से बस जहन में इरादे किए जा रहे हैं, इरादे किए जा रहे हैं, तक जब इरादे करते रहे तो मसला हल हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हजरत ने लिखा है, यानी ये जो नमाज में दिल लगाने का तरीका है, इसमें तो आप, यानी इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है कि आपके समझ में ना आए, लेकिन हकीकत है ना, आप भी इससे मेरा ख्याल है सभी एग्री करेंगे कि ये तो उम्र जाती है, पूरी पूरी उम्र लग जाती है ना नमाज में दिल लगाने में, ठीक है। लेकिन हजरत ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच लाइनों के अंदर तरीका लिख दिया, तो भाई 5 लाइनों में जो तरीका लिख दिया है, तो हजरत ने तो अपनी किताब में बात ने कवर कर दी है, ताकि हमें सब चीजों के पॉइंटर्स मिल जाए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमारे दीन के लिए एसेंशियल्स हैं, ठीक है। तो चूंकि अब हर चीज के ऊपर अगर वो पूरी तफसील लिखना शुरू कर देंगे, तो फिर तो सिर्फ इस मौजू के ऊपर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जितना इल्म था, जितनी उनकी गहराई थी, जितना उनका मुशाहिदा था, तजुर्बा था, उसके हिसाब से सिर्फ इस मौजू के ऊपर अगर वो शुरू करते ना कलम चलाना, तो एक मोटी जखीम किताब लिख देते, ठीक है। लेकिन फिर क्या हम उसको पढ़ सकते थे? हम तो नहीं पढ़ सकते थे ना। तो हजरत ने चूंकि कम जगह के अंदर मौजूआत को समेटा है, इस वजह से 5 लाइनों में हजरत ने वो बातें लिख, वो मौजू कवर कर दिया है, जिसके अंदर लोगों को यानी जिंदगियां लग जाती हैं, या कम से कम अगर पूरी जिंदगी ना लगे तो यानी काफी अरसा लग जाता है, सालों तो लग जाते हैं ना इस मेहनत के लिए, ठीक है। तो कोई इस वजह से धोखे में ना हो कि बस जैसे ये 5 लाइनों के अंदर जैसे अल्फाज लिखे हुए हैं, बस मैंने ऐसे ही करना है और सारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये तो पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स के ऊपर हमने इरादा करके अमल करना शुरू कर देना है, लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ताला मदद भी आती है, और फिर वो हमें स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं, जिन स्टेप्स को लिए बगैर दुनिया के काम नहीं होते, ठीक है। दुनिया के काम से मुराद ये जो नमाज बनाना है ना, ये दुनिया का काम है आखिरत की नीयत के साथ, ठीक है। तो आखिरत की नीयत वाला काम तो है, लेकिन है तो इस दुनिया का ही अमल ना, जिसके अंदर आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है, कुछ आपको जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है कुछ, ठीक है। तो ये सब जो है मटेरियल यानी एक्शंस हैं, ठीक है, फिजिकल एक्शन, और फिजिकल एक्शंस में आता है, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो दुनिया है, ये सारी की सारी अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाई, और 6 दिन में बनाने का मतलब की वजह क्यों क्या थी? ये वजह नहीं थी कि अल्लाह ताला पलक झपकते में नहीं बना सकते थे, बल्कि वजह ये थी कि अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर एक तरतीब, एक उसूल रखना चाहते थे, वो उसूल तदरीजन काम होंगे और वक्त लगेगा काम होने के अंदर। तो इसी तरीके से नमाज बनाने में भी वक्त लगता है। बहरहाल, अपने नफ्स और दूसरों के शर से बचने का तरीका। अब जो है गोया कि वो बातें शुरू कर हैं यहाँ पर, कि जो कि इन रियलिटी आपको फिर पेश आती हैं रुकावटें, ठीक है। जब आप ये सारे अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं ना, जो हजरत ने यहाँ तक लिख दिए थे, तो अब फिर ऐसे तो नहीं होता है कि जी कोई रुकावट नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई कोई आपको रोकता नहीं है इस काम में, जिंदगी के साथ लगी हुई है ना। तो फरमाते हैं कि ऊपर जितनी अच्छी और बुरी बातों और सवाब और अजाब की चीजों का बयान आया है, इनमें से दो चीजें खराबी पैदा कर देती हैं, ठीक है, यानी इनमें दो चीजें खराबी पैदा कर देती हैं, यानी मुश्किल पैदा कर देती हैं। एक तो खुद अपना नफ्स, ये हर वक्त तरह तरह की बातें समझाता है, नेक कामों में बहाने निकालता है, यानी नेक काम ना करने के बहाने निकालता है, और बुरे कामों में अपनी जरूरतें याद दिलाता है, ठीक है, कि जी बुरा काम, ये काम करना तो तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें करना पड़े। तो ये सारी चीज आइडियाज जो हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये नफ्स की तरफ से आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बड़ी रुकावट है जी। क्या कह रहे हैं आप शेख साहब, आज जजीरा मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, वन सऊदी का स्टूड अप फॉर इमामत, ही वाज डूइंग द मिस्टेक्स ऑफ जबर एंड जेर इन सूरह फातिहा, फलक एंड तीन, शुड इट नीड टू बी रिपीटेड। जेर जबर की अगर मिस्टेक्स कर रहा है, अब उसने किस किस चीज में क्या क्या मिस्टेक्स करी है ये तो मुझे नहीं पता, जाहिर है इतना याद नहीं होगा, ये तो पता ही नहीं कि उसने क्या क्या करी है, कि मानी बदल गए से कि नहीं मानी बदल गए। तो एहतियातन आप कजा, या कजा तो खैर नहीं, अभी आपके पास वक्त है, अगर आप समझते हैं कि जी उसने कोई मेजर मिस्टेक्स करी है तो फिर रिपीट कर लें इसमें, आई डोंट नो, तो मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहां था नहीं, सुन नहीं रहा था उसकी तिलावत को। अच्छा ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे फरमाते हैं कि बुरे कामों में अपनी जरूरतें याद दिलाता है, अजाब से डराओ तो अल्लाह ताला का गफूर और रहीम होना याद दिलाता है, और ऊपर से शैतान उसको सहारा देता है, ठीक है। यानी नफ्स जो है वो हमारा, हमारी इंटरनल एनिमी है, हमारे मुल्क का गद्दार है, ये जो हमारा वजूद है ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं वो हमारा नफ्स है, ठीक है। और गद्दार को कोमक कहाँ से मिलती है, सप्लाईज कहाँ से मिलती हैं, वो बैरूनी दुश्मनों से मिलती हैं, ठीक है। तो वो बैरूनी दुश्मन हमारा शैतान है, उसी को हज़रत फरमा रहे हैं कि शैतान उसको सहारा देता है। दूसरे फसाद डालने वाले वो आदमी हैं जो इससे किसी तरह का ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। यानी बैरूनी दुश्मन जो है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो जिन की शक्ल में होते हैं, दूसरे जो है इंसान की शक्ल में होते हैं, मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है। पूरे कुरान मजीद का आखिरी लफ्ज क्या है, ठीक है, अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिक नास लाइन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ठीक है। और नास या नास नहीं, बल्कि नास से मुराद इंसान, ठीक है। तो कुरान का इख्तिताम किस पर हो रहा है, इंसान के लफ्ज पर हो रहा है, और इंसान कौन से वाले इंसान, जो कि वसवसे डालते हैं, ठीक है, बुराई की तरफ बुलाते हैं। तो ऐसे लोग फिर हम कहते हैं कि जी हाँ, शायद हम भी इस तरह का रोल प्ले कर रहे हो किसी और के लिए उसकी जिंदगी में, और हमारी जिंदगी में दूसरे ये वाला रोल प्ले कर रहे हो, यानी बुराई की तरफ दावत देने वाला रोल और नेकी से रोकने वाला रोल। तो फरमाते हैं कि या तो अजीज व अकारिब हैं, ये रिश्तेदार होते हैं बहुत सारे, तो या जान पहचान वाले होते हैं, या बरादरी कुंबे वाले होते हैं, ठीक है, दफ्तर के साथी हों, कॉलेज के साथी हों, या बरादरी के मोहल्लेदार हों, जिस तरह के भी लोग हों, तो बेहतर होते हैं ये। कुछ गुनाह तो इसलिए होते हैं कि इनके पास बैठने से उनकी बुरी बातों का असर इसमें आ जाता है, और बाज गुनाह उनकी खातिरदारी की वजह से होते हैं। यानी कुछ तो बस बैठने से जो असर आ जाता है बुरी सोहबत का, जैसे कि नबी फरमाया कि अगर तुम किसी भट्टी वाले की दुकान पर जाओगे तो तुम्हें उसका धुआं तो लगेगा ना, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे ना भी हो फिर भी धुआं तो लगेगा, और अगर किसी अच्छी इतर वाले की दुकान पर जाओगे तो तुम्हें, अगर तुमने खुशबू ना भी खरीदी, फिर भी तुम्हारे कपड़ों में खुशबू रच बस जाएगी। तो ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से निजाम है कि सोहबत का असर होता है। और दूसरी रीजन क्या होती है कि जी बस उनके रख रखाव की वजह से, खातिरदारी की वजह से, उनको खुश रखने की खातिर हम गुनाह कर लेते हैं, और बाज इसलिए होते हैं कि उनकी निगाह में कापन ना हो, और बाज जो है एक मिनट, यानी उनकी निगाह में हल्कापन ना हो, यानी वो जो है वो मजाक ना उड़ाए, मेरे ख्याल में उसका ये मतलब है हजरत का, कि वो हमें ना, तुम तो मौलवी बन गए हो और तुम्हें तो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, और तुम तो 1400 साल ना चाहते हो, और इस दौर के अंदर तुम ये बातें कर रहे हो, इस तरह की बातें करने में से हम बचना चाहते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि हमें इस तरह की बातें सुननी ना पड़ जाए, कहीं मलामत ना सुननी पड़ जाए, तो इस वजह से हम गुनाह कर लेते हैं। और बाज ये हो जाते हैं कि लोग इसके साथ बुराई करते हैं, कुछ वक्त इस बुराई के रंज में, कुछ वक्त उनकी गिबत में, और कुछ वक्त उनसे बदला लेने की फिक्र में खर्च हो जाता है। ठीक है, जब आपके साथ किसी ने बुराई करी तो फिर पहले तो गम गुस्सा होता है, फिर उसके बाद उनसे बदला निकालने की कोशिश शुरू होती है, तो उसके लिए पहले गीबत करते हैं उनकी, और फिर बदला निकाल लेते हैं या निकालने की कोई भी तदबीर करते हैं। फिर इससे तरह तरह के गुनाह पैदा हो जाते हैं। गर सारी खराबी इस नफ्स की ताबेदारी की वजह से है। इस खराबी से बचने के लिए दो बातें जरूरी हैं। ठीक है, यानी जो कहते हैं गुरु घंटाल, गुरु गुरु घंटाल, ठीक है, गुरु है ना, गुरु गुरु नानक, तो खैर वो तो उनके सिखों के थे, लेकिन गुरु किस है, हिंदी जुबान का लफ्ज है ये। असल जो सरगना होता है ना किसी बुरे काम का सरगना, ठीक है, जो असल कॉज होता है उसको कहते हैं गुरु है ये तो, ठीक है, या असल बड़ा, जैसे कि ये तो यानी कंप्यूटिंग का गुरु है, ये तो प्रोग्रामिंग का गुरु है। ठीक है, तो हर काम का जो गुरु है ना वो है असल में हमारा नफ्स, हमारा अपना नफ्स। ठीक है, तो असल गुरु घंटाल जो है वो तो नफ्स होता है। तो इससे बचने के लिए दो बातें जरूरी हैं, एक तो ये कि अपने नफ्स को दबाना, उसको कभी बहला फुसला कर, कभी डांट डपट कर दीन की राह पर लग, दूसरे लोगों से जिद ना रखना और इस बात की परवाह न करना कि वो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। इसलिए इन दोनों बात जरूरी बातों को अलग अलग लिखा जाता है। तो पहला ये कि नफ्स के साथ मामला कैसा किया जाए। अच्छा, साथ थोड़ा सा वक्त सुबह को और थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकरर कर लो। इस वक्त अकेले बैठकर जहां तक हो सके दिल को सारे ख्यालों से खाली करके इससे यूं बातें किया करो, और नफ्स से यूं कहा करो कि ए नफ्स, खूब समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक ताजर किसी है। यानी इस तरह से अपने आप से गोया के कॉन्वर्सेशन करना। तो ये मशायख जो होते हैं ना, ये डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, रूहानी डॉक्टर्स, यानी रूह के डॉक्टर्स, जो कि रूह को उसकी बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब ये डॉक्टर्स जो होते हैं, जिस तरह से जिस्मानी अमराज के डॉक्टर्स मुख्तलिफ क्या कहेंगे उसको, टाइप्स के होते हैं, या मुख्तलिफ यानी क्या कहेंगे, यानी कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, कुछ जो है वो हर्बल मेडिसिन हकीम हकीम कहलाते हैं, कुछ जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स कहलाते हैं, कुछ जो है वो कायरोप्रैक्टर्स, पता नहीं कायरोप्रैक्टर्स का नहीं, जो भी है, यानी ग्रीक मेडिसिन है या चाइनीज मेडिसिन है या इस तरह के। ठीक है, तो हर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, लेकिन जो होती हैं वो हर एक के पास अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक होती हैं। तो उसी तरह से रूहानी डॉक्टर्स का भी ये मामला होता है कि डॉक्टर तो सारे होते हैं जो मशायख कहलाते हैं, लेकिन किसी का कोई तरीका होता है इलाज करने का, किसी का कोई तरीका होता है इलाज करने का। तो हजरत जिस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, तो उस सिलसिले के अंदर जो इलाज का तरीका है वो ये है कि नफ्स से बाकायदा बैठ करके बात करें, ठीक है, और उसको इस तरीके से समझाएं कि तेरी मिसाल दुनिया में एक ताजर की सी है, पूंजी तेरी उम्र है। ठीक है, जैसे कि सूरह वल असर के अंदर हमने तफसीर साथ ये बात पढ़ी थी कि तेरी जमा पूंजी तेरी उम्र है, तेरा कैपिटल, तेरा जो सरमाया है, और नफा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात हासिल करे, यानी तुम्हें उस वक्त नफा मिलेगा जब आखिरत का नफा मिलेगा। अगर ये दौलत हासिल कर ली तो तिजारत में नफा हुआ, अगर इस उम्र को यूं ही खो दिया और भलाई और निजात हासिल ना की तो इस तिजारत में बड़ा नुकसान उठाया कि पूंजी भी खुल भी गई और नफा भी नसीब ना हुआ। जैसे कि बर्फ की मिसाल दी थी सूरह असर की तफसीर में कि बर्फ का जो ताजर होता है ना वो बिल्कुल सिमट हालत होती है एक इंसान के जैसे, इसलिए कि बर्फ एक ऐसा सरमाया है, एक ऐसा रासुल माल है कि जिसको कि अगर आपने बेच दिया तो आपको नफा मिल जाएगा, और अगर आपने उसको ना बेचा तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो पिघल जाती है वक्त के साथ। ठीक है, तो वो तो पिघल ही जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि आप बर्फ को जो है वो किसी गलत काम में इस्तेमाल करें तब आपको नुकसान होगा, बल्कि अगर आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, किसी भी गलत काम में भी इस्तेमाल ना करें, तो फिर भी आपको नुकसान होगा। तो उम्र का यही मामला है कि आपने उसको अच्छे काम में इस्तेमाल किया तभी फायदा होगा, और अगर आपने उसको गलत काम में इस्तेमाल किया तो बड़ा नुकसान होगा, और अगर बिल्कुल ही उसको इस्तेमाल ना किया, जैसे कि फारिग बैठ या जो है वो कुछ ना किया, तो फिर जो है वो फिर भी आपका नुकसान ही का बायस बनता है। उसी को कह रहे हैं कि पूंजी भी गई और नफा भी नसीब ना हुआ, और ये पूंजी ऐसी कीमती है कि इसकी एक एक घड़ी بلکہ ایک ایک سانس پہ انتہا قیمت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے دین نے اللہ کے ذکر کا تصور دیا، اور یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ آپ اپنے ہر ہر سانس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ہر یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر نا یہ آورز اینڈ ڈیز جو ہے یہ خالی انسان نہیں کرتا، بلکہ ایک ایک لمحے کا استعمال، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اور اچھی نیت جو ہے وہ ہر وقت رکھی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ اسباب کی اور وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے یہاں ایک ایک سانس قیمت رکھتا ہے، تو سانس کو آپ نے مس کر دیا تو گویا کہ آپ نے نقصان اٹھا لیا۔ جب ہمارے مشائخ ایک بات کہتے ہیں کہ جو دم قابل وہ دم کافر، یعنی جو دم، دم کہتے ہیں سانس کو، بریتھ کو، تو وہ اگر غفلت میں گزر گئی اللہ تعالیٰ سے تو گویا کہ وہ کفر کی حالت میں گزر گئی، گویا کہ، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اچھا، خزانہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی برابری نہیں کر سکتا، ایک تو اس لیے کہ خزانہ اگر جاتا رہے تو کوشش اور محنت سے اس کی جگہ دوسرا خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمر جتنی گزر جاتی ہے اس کی ایک پل بھی لوٹ کر نہیں آ سکتی، نہ بھی عمر مل سکتی ہے۔ واقعی یہ والی جو بات ہے نا، یہ اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے نا تو مطلب خدا کی قسم ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں، بڑے بڑے مسئلے، کہ یہ جو عمر ہے نا یہ واپس نہیں آنے والا۔ دیکھیں، آپ کسی بزنس میں آپ کو لاس ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ آپ دوسرا بزنس شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی دوسرا عزیز رشتہ دار جو ہے جگہ لے لے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری جگہ لے لے، حتیٰ کہ اگر آپ کی کوئی بہت محبت کرنے والا آپ کا ساتھی، جیون ساتھی، آپ کا شوہر، عورت کا شوہر یا شوہر کا کی بیوی، ٹھیک ہے، وہ اگر دنیا سے چلی جائے تو ممکن ہے کہ دوسری شادی کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی دوسری ہے، بیوی کو شوہر دوسرا مل سکتا ہے، اولاد چلی جائے تو شاید دوبارہ اولاد بھی مل جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن عمر اور وقت، جو کہ وقت ہی عمر ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے نا تو یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی عمر ہے ہمارے پاس، اور اس ایک ہی عمر کی ایک ہی مرتبہ ہمیں بچپن ملا، ایک ہی مرتبہ ہمیں لڑکپن ملے گا، ایک ہی مرتبہ ہمیں جوانی ملی ہے، اور ایک ہی مرتبہ ہمیں بڑھاپا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا نا، there is no turning back, there is no second chance, there is no second chance, کوئی second chance نہیں ہے۔ تو اب اس عمر کے اندر ہم کیسے کیسے اس کو ضائع کرتے ہیں، اور کیسے کیسے اس کو یعنی برا کرتے ہیں، یعنی برباد کرنا تو ضائع کرنے کے معنی میں آ گیا نا، جی آپ نے کچھ نہ کیا، آیا ہو گئی، برباد ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ہم لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑ کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے ساتھ لڑ کر کے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ لڑ کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کو کوئی دوبارہ دوسری بار ملے گی جس کے اندر کہ وہ اچھے ازدواجی تعلقات گزارے گا، اچھی سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا؟ دوسری عمر تو نہیں ملے گی نا، بس یہی تو ایک عمر ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو چھوڑنے کے لیے فکر کہ میں اپنی کر رہا ہوں، کس طرح سے لڑ جھگڑ کر کے، دوسرے کو تکلیف دے کر کے، اپنی وجہ سے اذیت پہنچا کر کے، دوسرے کے نقصان کا باعث بن کر کے میں زندگی جو گزار رہا ہوں، تو یہ زندگی مجھے دوبارہ تو نہیں ملے گی جن کے اندر میں ان غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ یا غلطی اگر آپ اپنے نہیں بھی سمجھتے، آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، آپ بے شک حق پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی سکون والی تو نہیں ہے نا، آپ کی زندگی تو اذیت والی گزر رہی ہے نا۔ تو بھائی، یہ اذیت والی زندگی گزارنا کوئی ضروری ہے آپ کے لیے؟ آپ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کر لیتے، کوئی اس کا حل کیوں نہیں کرنے کی کوشش کرتے؟ بس بیٹھے ہوئے زد گرمی کی وجہ سے کہ نہ جی میں نے خود چینج ہونا ہے، اور نہ میں نے کسی کے پاس جا کے مشورہ کرنا ہے، بس جیسی تیسی گزر رہی ہے ویسی تیسی گزر جائے۔ تو یہ تو یعنی بہت ہی زیادہ گھاٹے والی بات ہے نا۔ تو فرمایا کہ دوسرے یہ کہ اس عمر سے کتنی بڑی دولت کما سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار، इतनी बड़ी दौलत किसी खजाने से कोई नहीं कमा सकता, इस वास्ते ये पूंजी बहुत ही कीमती है। और ए नफ्स, अल्लाह ताला का एहसान मान के अभी तेरी मौत नहीं आई जिससे ये उम्र खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने आज जिंदगी का एक और दिन अता किया, अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से आरजू करे कि मुझे एक दिन की उम्र और मिल जाए ताकि इस एक दिन में मैं सारे गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा कर लूं और अल्लाह ताला से पक्का वादा कर लूं कि फिर इन गुनाहों के पास ना फटकूंगा और वो अल्लाह ताला की याद और ताबेदारी में गुजार लूंगा। ठीक है, तो वो तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ मामला ऐसा किया कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने कब मरना है। अगर हमें पता चल जाए ना तो या तो हम नेक बन जाए या ये कि फिर हम ऐसे गाफिल हों कि फिर कि भाई अभी तो अभी वक्त है, अभी तो मरने में वक्त है, इसलिए कि हमें पता चल चुका है ना कि हमारे पास 20 साल और हैं, तो फिर तो ऐसा मामला हो कि हम बिल्कुल ही फिक्र ही छोड़ दें कि जब 20 साल गुजरेंगे ना और जब मेरे पास एक दिन रह जाएगा ना मरने के लिए तब मैं नेक बन जाऊंगा। ठीक है, और होगा क्या, चूंकि शैतान है तो शैतान जो है वो उस आखिरी दिन के आने को ही हमारे जहन से भुला देगा कि जी अब तो तुम्हारा एक दिन रह गया खाली, तो फिर जो है ना वो हम तो गए सारे के सारे। ठीक है, तो यार ये भी अल्लाह ताला के बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना नहीं बताया कि हमने कब मर। बस ये रिमाइंडर्स अल्लाह ताला दिलवाते रहते हैं, कभी किताब के जरिए से, कभी क्लास के जरिए से, कभी किसी बयान के जरिए से, कि बस इन रिमाइंडर्स को ही तुम तवज्जो से सुनो और उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। जब मरने के वक्त तेरा ये हाल और ये ख्याल होता है तो यूं ही समझ ले कि गोया मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है और मेरे मांगने से अल्लाह ताला ने ये दिन मजीद दे दिया है और इस दिन के बाद मालूम नहीं कि कोई और दिन नसीब होगा या नहीं, लिहाजा इस दिन को तो इसी तरह गुजारना चाहिए कि गोया ये उम्र का आखिरी दिन है, यानी सब गुनाहों से पक्की तौबा कर। और इस दिन में कोई छोटी या बड़ी नाफरमानी ना करे और पूरा दिन अल्लाह ताला के ध्यान और खौफ में गुजार दे और अल्लाह ताला का कोई हुक्म ना छोड़े। जब वो सारा दिन गुजर जाए फिर अगले दिन यूं ही सोचे कि शायद उम्र में से यही एक दिन बाकी है और ए नफ्स इस धोखे में ना आना कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे, क्योंकि अव्वल तो तुझे कैसे मालूम हुआ कि माफी कर देंगे और सजा ना देंगे, अगर सजा होने लगे तो उस वक्त तू क्या करेगा और उस वक्त कितना पछताना पड़ेगा, और अगर माफी कर दिया तब भी तो नेक काम करने वालों को जो इनाम और मर्तबा मिलेगा वो तुझको नसीब ना होगा, इसलिए कि तूने तो अपने वक्त जाया कर दिया, तो जिन्होंने नेकी में वक्त लगाया तो उनको जो मुकाम मिलेगा तो फिर हसरत करेगा कि काश के मैं भी कर लेता, मैं भी उन जैसा मुकाम पा लेता अगर माफ कर दिया तो। फिर जब तू अपनी आंखों से दूसरों को नेमतें मिलना और अपना महरूम होना देखेगा तो किस कदर हसरत और अफसोस होगा। इस पर अगर दिल में ख्याल आए कि फिर मैं क्या करूं और किस तरह कोशिश करूं, तो ये सोच लो कि जो चीज तुझसे मरकर छूटने वाली है और बुरी आदतें, तू उसको अभी छोड़ दे, और जिससे तुझको सबका पड़ने वाला है और इसके बगैर तेरा गुजारा नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला और उसको राजी करने की बातें, उसको अभी से इख्तियार कर ले और इसकी याद और ताबेदारी में लग जाए। ठीक है, तो ये भी एक गोया इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है कि इंसान अपने आप को इस तरह से याद दहानी कराता रहे, और ये थोड़ा बहुत सोचने से जो है ना इंसान को फायदा होता है, स्पेशली कि जब वो बुरी तरीके से गुनाहों के अंदर फंस ना चुका हो। ठीक, जब उसके अंदर यानी रूहानी बीमारी की जो मकदार है ना वो थोड़ी कम होती है ना, तो उस वक्त जो है ये सारी सोचें जो होती है ना वो उसको वाकई फायदा दे देती हैं। और इसी उसूल की वजह से आपके अब जब बीमारी छोटी होती है तो उसका इलाज भी आसान होता है और जब बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से अगर हम ये बातें जो हजरत ने यहाँ लिखी है ना, ठीक है, इन बातों की वजह से शायद हम तो ठीक ना हो सकें, इसलिए कि हमारी बीमारी बढ़ चुकी है। ठीक है, हम तो यानी इमरजेंसी रूम में ले जाने के इस वक्त हालत में है ना, और जरा जरा लंबी ट्रीटमेंट की जरूरत है हमें, लेकिन यही बातें हमारे बच्चों को फायदा दे सकती हैं, राइट? यही बातें हमारे बच्चों को फायदा दे सकती हैं कि हमारे बच्चे अगर 6 साल की उम्र का है, 7 साल की, ठीक है, 9-10 साल की उम्र का बच्चा है या बच्ची है, तो वो अभी गुनाहों के अंदर नहीं पड़ा है। ठीक है, माहौल का असर उसके ऊपर अगर हुआ भी है तो इतना गहरा, कि जिसकी वजह से कि वो बाहर ना निकल सके। तो अगर हम इस अंदाज में बच्चे से बात करेंगे ना, और लिटरली की जा सकती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी अपने बच्चों से इसी तर्ज से बात करने की, ठीक है, तो बच्चों के लिए जो है ना वो इन बातों को समझ लेना और इनके मुताबिक फिर अपनी जिंदगी को बना लेना, ये उनके लिए बहुत आसान है, बहुत मुमकिन है उनके लिए, ठीक है। इसी को कहते हैं ईमानी तरबियत, औलाद की ईमानी तरबियत, ठीक है। तो ये बातें जो है ना उनके लिए आसान है, उनके लिए वाकई यानी बहुत असर करने वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो हम नेक ना बन सके आसानी के साथ, तो हमारे बच्चे तो नेक बन जाए ना कम अज कम। अच्छा, अपने नफ्स से कहे कि ए नफ्स, तेरी मिसाल बीमार किसी है, और बीमार को परहेज करना पड़ता है, और गुनाह करना परहेज है, इसलिए इसे परहेज करना जरूरी है, और ये परहेज अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए बनाया बताया है, ठीक है। तो ये परहेजगारी या परहेज जो है ये सारी उम्र का है, ये तो थोड़ी देर का तो नहीं है कि बस अभी परहेज कर लिया फिर सेहतमंद हो गया फिर उसके बाद परहेज शुरू कर ली। सोच तो सही, अगर दुनिया का कोई अदना सा हकीम किसी सख्त बीमारी में तुझे बता दे कि फना मजेदार चीज खाने से बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और तू सख्त तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा, और फना कड़वी और बदमजा दवा रोज खाते रहोगे तो सेहतमंद रहोगे और तकलीफ कम हो जाएगी, तो यकीनी बात है कि इस हकीम के कहने से कैसी ही मजेदार चीज हो उसको सारी उम्र के लिए छोड़ देगा, और दवा कैसी ही बदमजा और नागवार हो आंख बंद करके रोजाना निकल जाया करेगा। माना कि गुनाह अगरचे बजाहिर बड़े मजेदार हैं और नेक काम नफ्स को नागवार हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन मजेदार चीजों को नुकसानदेह बताया है और उन नागवार कामों को फायदा मंद बताया है, फिर नुकसान और फायदा भी हमेशा हमेशा का है, जिसका नाम दोजख और जन्नत है। तो ए नफ्स, ताजुब और अफसोस की बात है कि जान की मोहब्बत में अदना हकीम के कहने का तू यकीन कर ले और उसका पाबंद हो जाए, और अपनी ईमान की मोहब्बत में अल्लाह ताला के कहने पर दिल को ना जमाए और गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत ना करे और नेक कामों से फिर भी जी चुराए, तो फिर तू कैसा मुसलमान है? ये अल्लाह ताला के फरमान को एक छोटे से हकीम के कहने के बराबर भी नहीं समझता, ये असल पॉइंट है, ठीक है, कि वाकई हम डॉक्टर के कहने के ऊपर ऐसे ईमान लेकर के आते हैं हालांकि उसने हमें कोई प्रूफ भी नहीं किया होता, वो बस हमें खुद ही जो है वो हमारी रिपोर्ट्स देखता है, खुद ही जो है वो अपना अपनी डायग्नोस्टिक्स चलाता है, ठीक है, रिपोर्ट जरूरी नहीं है वो हमें दिखाए, बहुत हमें अगर कुछ समझ होगी समझबूझ होगी तो डॉक्टर थोड़ी बहुत हमारे साथ शेयर कर लेता है, ठीक है, वरना तो वो हमें लिटरली एक फेस वैल्यू पे बातें बता रहा होता है कि जी आपके अंदर ये है और आप ये बीमारी है ये बीमारी, और हम उसके बात के ऊपर कैसे करते हैं आमन्ना व सदकना, कि हम आपके ऊपर ईमानदार और आपने बिल्कुल सच कहा हमारे साथ हमसे, ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम की बातें, अल्लाह ताला की बातें, कुरान की बातें और हमारे नेक बुजुर्गों की बातें, उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उनको लिफ्ट ही नहीं कराते बिल्कुल, ठीक है, तो किस किस्म के मुसलमान है, तो कैसा बेअकल है कि जन्नत के हमेशा हमेशा के आराम की दुनिया के थोड़े दिनों के आराम के बराबर भी कदर नहीं करता, और दोजख की इतनी सख्त और दायमी तकलीफ से दुनिया की थोड़े दिनों की तकलीफ के बराबर भी बचने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। मजीद ये कि नफ्स से यूं कहो, नफ्स से यूं कहो कि ए नफ्स, दुनिया सफर का मुकाम, दुनिया सफर का मुकाम है, दुनिया सफर का मुकाम है, और सफर में पूरा आराम हरगिज मयस्सर नहीं हुआ करता, तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, मगर मुसाफिर इसलिए इन तकलीफों को बर्दाश्त कर लेता है कि घर पहुंचकर आराम मिल जाएगा, अगर इन तकलीफों से घबरा कर किसी सराय में ठहर कर इसको अपना घर बना ले और आराम और आसाइश का सारा सामान वहां जमा कर ले तो सारी उम्र भी घर पहुंचना नसीब ना होगा, ठीक है, ऐसे ही है ना। इसी तरह दुनिया में जब तक रहना है मेहनत और मुशक्कत को बर्दाश्त करना चाहिए, इबादत में भी मेहनत है और गुनाहों के छोड़ने में भी मुशक्कत है और भी तरह तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन आखिरत हमारा असली घर है, वहां पहुंचकर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। गर्ज नफ्स से ऐसी ऐसी बातें करके उसको सही रास्ते पर लगाना चाहिए और रोजमर्रा इसी तरह समझाना चाहिए, और याद रखो कि अगर आदमी खुद अपनी भलाई और दुरुस्ती की कोशिश नहीं करेगा तो और कौन उसकी खैर ख्वाही करेगा, ठीक है। और कौन खैरख्वाही करेगा? अगला बंदा जो है वो आपको नसीहत कर सकता है, आप तक पैगाम पहुंचा सकता है, चाहे वो वक्त का नबी हो, चाहे वो वक्त का वली हो, चाहे वो आपका के खानदान का कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो आपके अपने वालदैन हो, वो आपको हाथ पकड़ करके नेक नहीं बना सकते। वो आपको नसीहत कर सकते हैं, याद दहानियां करा सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपको हिदायत नहीं दे सकता, ठीक है। हिदायत जो है वो अल्लाह ताला ने देनी होती है, और अल्लाह ताला उस शख्स को हिदायत जो कि हिदायत को इख्तियार करता है, नियत करता है हिदायत के रास्ते पर चलने की, फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक देते हैं, यानी तौफीक के लिए भी कुरान के अंदर हिदायत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो उसको तौफीक देते हैं कि अब वो नेक आमाल भी कर ले, लेकिन जो इरादा ना करे नेक बनने का, नियत ना करे गुनाहों को छोड़ने का, तो फिर उसके साथ अल्लाह ताला का क्या मामला होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को फिर हिदायत नहीं मिलती है, हिदायत नहीं देते हैं अल्लाह ताला, यानी तौफीक नहीं देते हैं। तो खैरख्वाही तो हमारे साथ इस तरह से लोग करते हैं जो कि नेक अल्लाह के बंदे होते हैं, वो हमारे साथ खैरख्वाही करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, नेक बना नहीं सकते, ठीक है। ये तो हो गई नफ्स के साथ, यानी जो एक रुकावट नफ्स में बनती है वो हमारा नफ्स होता है, तो उसके साथ फिर इस तरह से इन्होंने तरीका बतलाया कि डील करें, ठीक है। दूसरे रुकावट जो बनते हैं वो लोग बनते हैं, ठीक है। तो आम लोगों के साथ फिर क्या मामला करें, तो ये एक्चुअली टॉपिक है, क्योंकि नफ्स साथ लगा हुआ ही है, और पहले भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है, लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, तो ये इस जमाने में इतना मुश्किल हो गया है आम लोगों के साथ डील करना कि जितना पहले कभी मुश्किल था, ठीक है। तो इस वजह से ना इस टॉपिक को हमें जरा ज्यादा समझने की, में कोशिश करने की जरूरत है। फरमाते हैं कि लोग तीन तरह के होते हैं, एक तो वो जिनसे दोस्ती और रिश्तेदारी का ताल्लुक है, दूसरे वो जिनसे सिर्फ जान पहचान है, और तीसरे वो जिनसे जान पहचान भी नहीं होती है, ठीक है, स्ट्रेंजर्स कहलाते हैं। हर एक के साथ बर्ताव का तरीका अलग है। जिनसे जान पहचान भी नहीं, अगर उनके साथ मेल जोल रखना पड़े तो इन बातों का ख्याल रखो कि वो जो इधर उधर की बातें और खबरें बयान करें उनकी तरफ कान मत लगाओ, ठीक है। और ये आज के दौर में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, इसलिए कि एक बिल्कुल अननोन आदमी जो है व्हाट्सएप मैसेज चलाता है, और फिर वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो अगला बंदा उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये क्या है, ये ना सिर्फ ये कि कान लगाना है उस चीज को बगैर ऑथेंटिसिटी के, बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर के, बल्कि उसको आगे भी फैला देना है, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया की मुसीबत इस दौर के अंदर आई है ना, तो ये फिर इस कैटेगरी के अंदर भी हो जाएगी कि उनके साथ हमें कैसा मामला करना चाहिए, सोशल मीडिया के मैसेजेस के साथ। तो हमें उनकी तरफ कान नहीं लगानी चाहिए, उनसे बहुत ज्यादा मत मिलो, ठीक है। ये जो हमने कई ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं, ठीक है, हर चीज का एक ग्रुप ज्वाइन किया होता है, बल्कि हर चीज के कई कई ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, और हर वक्त जो है वो हमारे ऊपर भरमार हो रही होती है, इसको हमें कम करने की जरूरत है, ठीक है। जो हमारे आखिरत से के लिए जरूरी ग्रुप्स हैं अगर, ठीक है, हमारे इल्म के लिए जरूरी हैं, हमारी इस्लाह के लिए जरूरी हैं, तो उनमें भी बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होकर के शामिल होने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसी जगहों पे जहां पर के हर कोई अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो है वो चीजें भेज दिया करता है, और दीन के नाम के ऊपर भेजता है, तो फिर ऐसी चीजों से हमें थोड़ा कतअ ताल्लुक होना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेल जोल जो है वो यानी नुकसान पहुंचाता है, अगरचे के दीन के नाम पर हो फिर भी नुकसान, ठीक है। तो इनसे बहुत ज्यादा मत मिलो, इनसे कोई उम्मीद और इल्तिजा मत करो, और अगर कोई बात इनमें खिलाफ शरा देखो तो अगर ये उम्मीद हो कि नसीहत मान लेंगे तो नरमी से समझा दो। जिन लोगों से दोस्ती और ताल्लुक है इनमें इसका ख्याल रखो, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी मुकम्मल हुई। दूसरी कैटेगरी जिनसे दोस्ती का ताल्लुक होता है, इनमें इसका ख्याल रखो कि अव्वल तो हर किसी से दोस्ती और राहो रसम मत पैदा करो, क्योंकि हर आदमी दोस्ती के काबिल नहीं होता, अलबत्ता जिसमें ये पांच बातें राहो रसम रखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बुरी आदत होती है कि जहां जाते हैं जिसके साथ बैठ बातें करना शुरू कर देते हैं, और जब बातें करते हैं तो फिर थोड़ी देर में दोस्ती बन जाती है, ठीक है। तो ये एक बुरी आदत है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जिसके अंदर भी ये आदत हो ना, ये पैदाइशी किस्म की एक आदत होती है, ठीक है, तो जिस ये आदत है ना उसको जरा उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो 5 बातें अगर हो तो फिर दोस्ती रखने में हर्ज नहीं है। पहली बात यह कि वो अकलमंद हो, क्योंकि बेवकूफ आदमी से एक तो दोस्ती का निभाना ही होता, वो निभा नहीं पाता दोस्ती को। दूसरे कभी ऐसा होता है कि वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहता है मगर बेवकूफी की वजह से उल्टा नुकसान कर उतरता है, ठीक है। बात यह है कि उसके इखलाक और आदात दुरुस्त हों, अपने मतलब की दोस्ती ना रखे और गुस्से के वक्त आपे से बाहर ना हो जाए। जरा जरा सी बात में तोते की सी आंखें ना बदल ले, ठीक है, यानी तोते की तरह आंखें ना बदल, यानी वो धोखा ना दे जाए आपसे, जो है वो जब आपको जरूरत पड़े तो यानी आंखें बदलने से मुराद होता है कि अपना रवैया तब्दील कर ले आपके साथ, ठीक है, जरा जरा सी बातों की वजह से, ठीक है, तो अच्छे अखलाक वाला हो। तीसरी बात यह है कि दीनदार हो, क्योंकि बेदीन शख्स जब हक अदा नहीं करता तो तुम्हें इससे क्या उम्मीद है कि इससे वफा होगी, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जो अल्लाह ताला का वफादार नहीं है वो आपका वफादार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये हम बहुत बड़ी गलतियां कर लेते हैं कि हम जो है वो किसी बेदीन शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और कहते क्या है कि जी बाद में दीनदार हो जाएंगे वो, ठीक है। तो भाई वो आपकी वजह से दीनदार क्यों होने लगे, जब वो अल्लाह और रसूल की वजह से दीनदार नहीं बने तो आपकी वजह से दीनदार क्यों? तो आप अपनी जिंदगी को दांव पे मत लगाएं इस वजह से, ठीक है। तो जिंदगी का साथी सेलेक्ट करते वक्त जो है ना वो उनके उस वक्त के एग्जिस्टिंग दीन की हालत को, ठीक है, ये मत तवक्को करें कि वो बाद में ठीक हो जाएंगे। भाई 25 साल की एक दीवार टेढ़ी खड़ी हो रही है तो वो आपके पास आकर के सीधी कैसे हो जाएगी, ठीक है। अब अल्लाह के लिए, अल्लाह की कुदरत में तो हर चीज मुमकिन है, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी दे देते हैं, ठीक लगता है, नेक बन भी जाए, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना ये तो अकल के खिलाफ है ना, ये तो बहुत ही यानी बेवकूफी की बात है कि जी इस रिस्क के ऊपर जो है आपने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। वही होता है कि जी चूंकि बुरी आदतें लगी हुई होती हैं और वो बुरी आदतें जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे सामने दीन के मुकाबले में, तो इस वजह से दीन को हम नहीं दे रहे होते और उन बुरी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। खूबसूरत खूबसूरती है और माल दौलत है और अच्छी जॉब है या अच्छा ये है और अच्छा वो है, तो इस वजह से हम कहते हैं जी बाद में दीनदार बन जाएंगे, ठीक है, बाद में दीनदार बन जाएंगे और फिर उसके बाद कूद पड़ते हैं उसके अंदर, फिर बाद में जो तमाशे होते हैं फिर वो कोई दीनदार वगैरह कोई नहीं बन रहा होता, बन भी रहा होता है तो ऊपर ऊपर से बनता है, अंदर से वैसे ही होता है जैसे कि उसकी उठान हुई है, ठीक है। तो फिर तो हमारी जिंदगी तो गई ना, फिर वो दोबारा तो नहीं आएगी ना फिर, सही। तो दीनदार शख्स के साथ ताल्लुक बनाना, दोस्ती करना। दूसरी खराबी यह है कि जब तुम बार बार उसको गुनाह करते देखोगे और दोस्ती की वजह से नरमी करोगे, ठीक है, दोस्ती चाहे वो किस शक्ल की भी दोस्ती हो तुम्हें बहरहाल नरमी करनी पड़ेगी उसके साथ, तो खुद तुम्हें भी इस गुनाह से नफरत नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो जिनके साथ उन्होंने लाइफ लॉन्ग दोस्ती लगा ली होती है तो अब वो कहते हैं जी कि घर के अंदर जो है वो ये वाली चीज होनी चाहिए, उनको पता होता है कि ये वाली चीज यानी आपको पता होता है कि ये वाली चीज हराम है, इसकी वजह से घर के अंदर नहुसत आएगी, गुनाह आएगा इसकी वजह से, लेकिन चूंकि आप उनके साथ हर वक्त जो है वो आप ऐलान जंग तो नहीं कर सकते तो इस वजह से उनके प्रेशर में आकर के आप वो चीज घर में ले आते हैं। जब वो चीज घर आ जाती है ना एक दफा तो फिर थोड़े दिन के बाद आपके लिए भी वो एक नेचुरल सी बात हो जाती है, आप भी उसके लिए इम्यून हो जाते हैं, आपको वो गुनाह का एहसास ही नहीं रहता, हालांकि पहले वो आपके लिए गुनाह था, ठीक है, लेकिन जब लेकर आ गए अब एहसास आपके अंदर से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरी खराबी यह है कि इसकी बुरी सोहबत का असर तुम पर भी पड़ेगा और तुमसे भी वैसे ही गुनाह होने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो यानी एक जो हिडन असर एक होता है जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। चौथी बात यानी उस शख्स में चौथी बात जो अगर आप देखें वो ये है कि इसको दुनिया की हिर्स ना हो, क्योंकि हिर्स वाले के पास बैठने से जरूर दुनिया की हिर्स पड़ती है, ठीक है, जिस चीज की लालच हो ना किसी को तो उसके साथ बैठने से उसी चीज की लालच फिर दिन में पैदा होती है। जब हर वक्त उसको इसी धुन और इसी चर्चे में देखोगे, कहीं पैसे का जिक्र है, लिबास की फिक्र है, कहीं घर के सामान का धंधा है, तो तुम्हें भी जरूर हिर्स होगी। जिसको खुद हिर्स ना हो, कम कीमत कपड़ा पहनता हो, अदना दर्जे का खाना खाता हो, हर वक्त दुनिया की नापायदारी का जिक्र करता हो, उसके पास बैठकर जो कुछ थोड़ी बहुत हिर्स होती है वो भी दिल से निकल जाती है। ठीक है, यानी ऐसे नेक बंदे के साथ जब हम वक्त गुजारते हैं ना, फिर हमारे दिल के अंदर से भी दुनिया की हिर्स निकलती है। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है ना, चौथी बात, तो चौथी बात को तो हमने खास कर जो है ना वो यानी दोस्ती के ऊपर ही महमूल रखना होगा। इस बात के अंदर जो है ना, ये मियां बीवी वाला ताल्लुक जो है वो नहीं चल सकेगा। ठीक है, इसलिए कि आपको ऐसी बीवी नहीं मिलेगी, मोस्ट लाइकली दुनिया में आपको ऐसी औरत नहीं मिलेगी जिसके अंदर ये चौथी वाली बात हो। ठीक है, दुनिया की हिर्स ना हो, हर औरत के अंदर दुनिया की कुछ ना कुछ हिर्स होगी। तो बीवी तलाश करने के मामले में जो है ना, वो अल्लाह की वलिया तलाश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं मिलेगी मोस्ट लाइकली। ठीक है, बहुत कम होती है। ठीक है, अलबत्ता दीनदार होना ये एक अलग लेवल है। ठीक है, ये विलायत सुगरा और कुबरा के लेवल से नीचे का लेवल है। तो बीवी तलाश करने के लिए दीनदारी देखनी चाहिए, यानी तीसरे हमने पीछे पढ़ा था ना, तो तीसरे पॉइंट का ख्याल जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप चौथे पॉइंट का ख्याल रखना शुरू कर देंगे, तो फिर शायद आप शादी ना कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से हर चीज का अपना एक एक मुकाम होता है, एक लेवल होता है। तो इस वजह से मैंने तीसरे वाले पॉइंट के अंदर ये लाइफ पार्टनरशिप का जिक्र किया था, चौथे वाले पॉइंट के अंदर लाइफ पार्टनरशिप वाला जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ। पांचवी बात यह है कि इसकी आदत झूठ बोलने की ना हो, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी का कोई एतबार नहीं है। खुदा जाने इसको इसकी किस बात को सच्चा समझकर आदमी धोखे में आ जाए। ये भी एक ऐसा मामला है जिसको कि आप जब किसी के साथ थोड़ा वक्त गुजरता है ना, तभी पता लगता है कि ये शख्स झूठा है कि ये सच्चा है। बहरहाल, इन पांच बातों का ख्याल तो दोस्ती का ताल्लुक कायम करने से पहले कर लेना चाहिए, और जब किसी में ये पांचों बातें देख लें और ताल्लुक पैदा कर लें, तो अब उसके हकूक अच्छी तरह अदा करें। वो हकूक ये हैं कि जहां तक हो सके जरूरत के वक्त इसके काम आओ, अगर अल्लाह ताला गुंजाइश दें तो उसकी मदद करो, इसका भेद किसी से मत कहो। ठीक है, दूसरों का भेद और खुसूसन अपने दोस्त का भेद जो है ना, यानी उसकी जो खुफिया बातें हैं वो दूसरों के सामने बयान ना करो। जो कोई उसको बुरा कहे उसको ना बताओ, अगर कोई इसकी बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है तो फौरन जाकर के अपने दोस्त को ना, ठीक है, उसको तकलीफ होगी इससे और हो सकता है कोई नुकसान वाला मामला कर ले वो। जब वो बात करे तो कान लगा कर सुनो। ठीक है, इग्नोर ना करो उसकी बातों को। अगर इसमें कोई ऐब देखो तो नरमी और खैर ख्वाही से तन्हाई में समझाओ, अगर इससे कोई खता हो जाए तो दरगुजर करो और उसकी भलाई के लिए दुआ करते रहो। ठीक है, कितनी अच्छी अच्छी नसीहतें हजरत ने यहाँ पे कर दी हैं। वाकई अगर हम बातों का ख्याल, तो एक तो ये कि हम अच्छे दोस्त बनाने के काबिल हो जाएं, और दूसरी बात ये कि फिर इन दोस्तों से सही मानों में फायदा उठाने के काबिल हो जाएं। तो ये भी ऐसी बातें हैं जिनको कि हमें अपने ऊपर भी अप्लाई करना होता है, लेकिन इनको हम अपने औलाद के मामले में भी इनको देखें, क्योंकि हमारे बड़ों का एक मामूल रहा कि वो अपनी औलादों के दोस्तों का बहुत ख्याल रखते थे कि हमारी औलादें जो है ना वो बुरे दोस्त ना बना जाएं। इसलिए कि अगर बुरे दोस्त बन गए ना, तो फिर वो नेकी के रास्ते पर नहीं चल सकेंगे, चाहे हम उनको घर में कितनी तालीम क्यों ना देते रहे। ठीक है, इस वजह से फरमाते थे कि दोस्त जो है वो तुम अपनी मर्जी से नहीं बनाओगे, बल्कि दोस्त हमारी मर्जी से बनाओगे। ठीक है, तो ये दो किस्म के आदमी हो गए जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरी किस्म के जो आदमी हैं उनका तस्करा इंशाल्लाह अगली क्लास पर रखते हैं, क्योंकि टाइम कम है। अगर किसी को कोई सवाल है, कमेंट है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई है तो आप बता दें कि कर रहे हो उसके, अदरवाइज खत्म कर दूंगा। हाउ टू डील विद बैड फ्रेंड्स, एक ही तरीका है, उनको छोड़ देना। ठीक है, या एटलीस्ट टेम्पोरारिली छोड़ देना, हमेशा के लिए ना छोड़ें बेशक, अगर वो इतने गहरे हैं कि जी आप उनको हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते, बहुत ही पुराने हैं और या ये कि खानदानी लोग हैं, आप उनसे खत्म नहीं कर सकते हमेशा की दोस्ती, तो टेम्पोरारिली यानी फिल वक्त तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को ऐसे दूसरे कामों की तरफ करें, ऐसे दूसरे अच्छे दोस्तों के साथ मसरूफ करें, अपने दोस्तों के लिए आपके पास वक्त ही ना रहे। अगर आप उनसे मिलते रहे ना, तो बस फॉरगेट इट, ये कहते ना भूल जाएं कि आप नेक बन सकते हैं, आप नेक नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसका एक एक ही जवाब है, छोड़ दें। छोड़ देने में तफसील क्या है, कि परमानेंटली छोड़ दें या टेम्परेरली छोड़ दें। तो अब वो फिर डिपेंड्स कि वो किस किस्म का आपके आपकी सा यानी आपकी उनके साथ दोस्ती है। ऑफिस के कॉलीग्स किस कैटेगरी में आएंगे? ऑफिस के कॉलीग्स में जिनमें से जिनसे के साथ आपका कोई पुराना दोस्ती का ताल्लुक नहीं है, जैसे कि कॉलेज के दोस्त थे किसी और, तो फिर वो तीसरी यानी पहली कैटेगरी में आएंगे जिनका के अभी हमने पीछे तस्करा पढ़ लिया है। ठीक है, यानी जिनके साथ आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है, क्योंकि इनके साथ आपका दोस्ती का होता, इनके साथ आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होती है वो प्रोफेशन से ताल्लुक रखती है, वो कोई आपकी पर्सनैलिटी के लेवल पे जान पहचान वाला मामला उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि आप फिर अब उनसे दोस्ती बनाने जा रहे हैं, तो फिर वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वरना वो पहली कैटेगरी में रहेंगे जिसका कि पहले तस्करा किया था। हाउ टू डील विद बैड ऑफिस कॉलीग्स, तो भाई उनके साथ डील करना तो यानी तहम्मुल सबसे पहली चीज है, सब्र और तहम्मुल के साथ, और फिर बहुत ही यानी फूक फूक के उनके साथ मामला करना, कदम रखना कि जी आपके लिए जो है वो ना वो प्रॉब्लम बन जाए ना आप उनके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम बन जाए। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें काफी तफसील हो सकती है, और मेरे ख्याल में अभी इसका नहीं है। ठीक है, तो बाद में कभी इस पे बात करते हैं, मे बी कल की क्लास में। एनीवे, तहमुल जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस सिचुएशन में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के अंदर। ठीक है, और कोई सवाल तो नहीं है, तो फिर क्लास खत्म करते हैं। अगर कोई था, कोई टाइप करना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह कल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।